भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयम् मिथः ताम् प्रविश्य पुरीम् राजन् मुमुदाते शतम् समः। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयम् मिथः ताम् प्रविश्य पुरीम् राजन् मुमुदाते शतम् समः। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयम् मिथः ताम् प्रविश्य पुरीम् राजन् मुमुदाते शतम् समः। नारद उवाच नारद ने कहा इति इस प्रकार तौ वे दोनों दंपति पति तथा पत्नी तत्र वहां समुद्य समान रूप से उत्साही समयम स्वीकार करते हुए मिथः परस्पर ताम उस स्थान में प्रविश्य प्रवेश करके पुरीम नगरी में राजन हे राजा मुमुदाते जीवन का भोग किया शतम् 100 समह वर्ष। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद नारद मुनि ने आगे कहा हे राजन वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द तथा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्ष तक जीवन का सुख भोगा। तात्पर्य इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोकों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं किंतु ब्रह्मा का 1 दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक का 1 दिन इस लोक के 6 माह के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग पुरंजन का इतिहास पढ़ रहे हैं। कई 1 सप्ताह से ये इतिहास चल रहा है। उसके 1 अंश को यहां विराम दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि इति इस प्रकार इस शब्द से कम से कम उस अंश को अपने मन में लाई है। ये पुरंजन घूम रहा था, अन्वेषण में था उपयुक्त स्थान के। हिमालय के दक्षिण में एक नगर देखा जिसमें 9 दरवाजा है, तो वह नगर उसको पसंद पड़ा। उससे नगर के समीप ही उपवन में वो बैठा था, तब तक देखा कि वहां एक प्रमदा, एक स्त्री, युवती स्त्री आ रही है। उसके साथ कई एक अनुचर हैं और बहुत सुंदर है। ये पुरंजन उससे बात करने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा, उसके रूप के, व्यवहार के, और अंततः विवाह का प्रस्ताव किया। उसके बात को सुन करके वह स्त्री भी उसके प्रस्ताव का समर्थन की। जैसे यह उसका, यह पुरंजन उसकी प्रशंसा कर रहा था, तो वैसे ही इसके पुरंजन के शरीर के अंगों के और भी चीज की वह प्रशंसा की और इसके प्रस्ताव को स्वीकार की। ये पुरंजन का जो इतिहास है, जीव के दुर्गति का इतिहास है, और जैसा आप बाद में सुनेंगे या पहले भी सुने होंगे कि यह रूपक है। नारद जी प्राचीन बरही को कुछ बात समझाने के लिए, उसकी स्थिति को समझाने के लिए एक रूपक एलगरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां जो स्त्री है, जो बुद्धि का प्रतीक है, श्रील प्रभुपाद इस विषय में लिखते हैं कि बुद्धि कितना भी उन्नत हो, कितना भी सुंदर हो, उसको चेतन तत्व की आवश्यकता है। जब तक आत्मा का आश्रय नहीं मिलेगा, चैतन्य का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। वे चैतन्य से मिलकर के, आत्मा का आश्रय लेकर के बहुत सक्रिय हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। जब तक आत्मा का आश्रय नहीं है, जीवात्मा का आश्रय नहीं है, तब तक बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। और जैसे कथा स्तर पर हम विचार करें तो देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण है। जैसा पुरंजन के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वह स्त्री की ओर आकृष्ट है, उसका भोग करना चाहता है। वो इस स्त्री का जैसा व्यवहार है, लज्जा से युक्त है, चुपचाप है, पुरंजन बोले जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि पुरंजन में ही काम वासना है, वह भोग चाहता है। लेकिन उस स्त्री के व्यवहार को देख करके, उसके वचन का विश्लेषण करके श्रील प्रभुपाद कई एक स्थानों पर तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्री के लिए आश्रय आवश्यक है। स्त्रियों की स्वाभाविक अभिलाषा होती है आश्रय की, और पुरुष का आश्रय चाहते हैं। और एक विचित्र बात श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जो कि आज के समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह स्त्रियों के चेतना का समुचित अध्ययन किए बिना स्त्रियों के व्यवहार को निर्धारित कर रहा है। हम लोग भी आधुनिक शिक्षा से प्रभावित हैं। हम लोगों के भी मन में यह विचार उचित लगता था, ऐसा लगता था कि स्त्रियों के साथ समाज सही व्यवहार नहीं किया है, कम उम्र में विवाह कर देता है, शिक्षा का उचित अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद विश्लेषण दे रहे हैं कि स्त्री का ऐसा व्यक्तित्व है कि उसकी इच्छा होती है, पुरुष की इच्छा, पुरुष प्राप्त करने की इच्छा होती है, और एक खास उम्र है, उस उम्र में यदि वह पुरुष का संग प्राप्त करती है तो उसकी स्पृहा, उस पुरुष के प्रति लगाव अस्थाई होता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि कोई स्त्री, कोई लड़की किशोरावस्था में है और उस समय भले ही कोई पुरुष उसका जबरदस्ती संग करता है, उसका स्पर्श करता है, उस समय उस पुरुष से जो वो सुख अनुभव करती है तो उस पुरुष के प्रति उसकी आसक्ति अस्थाई हो जाती है, जीवन भर चलती है, और यदि वह अवसर निकल गया तो अस्थायित्व का अभाव हो जाता है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ करके स्त्री व्यक्तित्व के विषय में और समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस विषय पर बहुत प्रकाश मिल रहा है। और खास करके कल का जो श्लोक था, श्री वैकुंठा प्रभु उस पर बोल रहा था, से इस स्त्री का वक्तव्य है, पुरंजनी का वक्तव्य है कि कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपके भुजाओं का आश्रय नहीं लेगी। उसके भुजा के विषय में कह रही है कि जैसे सांप का शरीर होता है, चिकना होता है और बर्तुल होता है, मतलब गोलाकार होता है, वैसे आपकी भुजा है। कौन ऐसी स्त्री होगी कि उस भुजा का आश्रय नहीं स्वीकार करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दिया श्री वैकुंठा। स्त्रियों में एक स्वाभाविक चाह है, पुरुष की स्वाभाविक चाह है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि उस चाह को प्राकृत पुरुष पूरा नहीं कर सकता। उस चाह के वशीभूत होकर के वह स्त्री पुरंजन के प्रस्ताव को स्वीकार की, और यहां नारद जी कह रहे हैं कि इति तो दंपति तत्र समुद्य समयम मिथ। वो दोनों में विवाह का उत्साह था, और विवाह के शर्त को, संस्कृत में शर्त को ही समय कहते हैं, तो उस समय को, शर्त को स्वीकार किए, और ताम प्रविष्ट पुरीम राजन मुमुदाते सतम समा। दोनों अब जब सहमत हो गए तो शर्त को स्वीकार करके, दाम्पत्य जीवन के शर्त को स्वीकार करके ताम पुरीम प्रविश्य, वो बगल में ही जो नगर था उसमें प्रवेश करके मुमुदाते सतम समा, वे 100 साल तक आनंद का उपभोग किए, मोद को प्राप्त हुए। जीवन की अवधि प्राय 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन ये 100 साल संख्या तो सेम है, लेकिन इसके ड्यूरेशन में अंतर हो जाता है। जो स्थान, जो लोक सूर्य से जितना दूर है, उसके अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार वो ड्यूरेशन का, काल का निर्धारण होता है। जैसे हम लोग यहां कहें कि सब लोग 2 मुट्ठी चावल यहां लाइए, यहां कोई मांग करे कि सब लोग 2 मुट्ठी चावल लाइए, सब लोग 2 मुट्ठी चावल लाएंगे, कोई छोटा बच्चा है तो वो जो चावल लाएगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका हाथ बड़ा है तो वो चावल लावे तो अधिक चावल हो जाएगा। तो उसी तरह ब्रह्मा जी के लोक में यहां का जब 1 चतुर्युगी बीत जाता है तो 1 दिन होता है, स्वर्ग में यहां का 6 महीना बीतता है तो 1 दिन, 6 महीना तो 1 रात, मतलब वहां का 1 दिन 1 रात यहां का 1 वर्ष के बराबर है। तो ऐसे समय में अंतर है। यहां कह रहे हैं कि मुमुदाते सतम समा, वे लोग 100 वर्ष तक आनंद लिए। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वो 100 साल तक आनंद अनुभव करे या 100 जन्म तक या 100 करोड़ जन्म तक, लेकिन जो चाह है, जो स्प्रिया है, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। ये जो माया का लथेड़ खाना, इसी को आनंद कहा जा रहा है। और दाम्पत्य जीवन या कोई भी जीवन है, यदि हम माया के प्रभाव में हैं, तो कभी आनंद मिलता है, कभी तिरस्कार मिलता है। दोनों माया का ही थपेड़ा है। आगे के अध्यायों में जीवात्मा का वर्णन किया गया, दंड मोदन में हुआ, उसके कुत्ते की स्थिति है। जैसे कुत्ते को कभी कभी मिठाई भी मिल जाता है, लोग मिठाई डाल देते हैं, और कभी कभी आता है तो डंडा मारते हैं। और जब तक ये माया के अंदर हम लोग हैं, तो जीवात्मा की यही स्थिति है। जब तक जो इसका स्वाभाविक विषय है वहां तक पहुंच नहीं होती, तब तक उस स्प्रिया की शांति नहीं होगी। और श्री वैकुंठा कल बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे, इस स्वाभाविक के वृत्ति तो गोपियों की है, जैसे वे भी कृष्ण के भुजा को देख करके आकृष्ट हो गई। जब तक हमारे चित्त की वृत्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति नहीं जा रही है, तब तक हमारी वासना की तृप्ति नहीं हो सकती, हमारा जलन नहीं शांत हो सकता। यही भक्ति की परिभाषा दी गई है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो स्पष्ट भक्ति की परिभाषा यही है कि देवानाम गुणलिंगानाम आनिश्रविक कर्मणाम सत्वैकतान मनस वृत्ति स्वाभाविकी तुया। जो हमारे इंद्रियों की वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति है, और वह सहज रूप से भगवान के तरफ लग जाए, तो यह सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, निर्गुणा भक्ति है, उचिता भक्ति है, उत्तमा भक्ति इसी को कहते हैं। हमारे इंद्रियों की वृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के तरफ लग जाए, ये सबसे सुंदर व्यवस्था है, सबसे उचित बात है। लेकिन दुर्दैव से हमारे इंद्रियों की वृत्ति स्वाभाविक कृष्ण की ओर नहीं जा रही है, तो ज्ञान का अवलंबन लेकर के, कर्म का अवलंबन लेकर के, योग का अवलंबन लेकर के भी हमारे इंद्रियों की वृत्ति उधर जा रही है, तो यह भी एक संतोष का विषय है। सबसे अच्छी बात है कि स्वाभाविक ही हमारी वृत्ति चली जाए, जैसे गोपियों की वृत्ति गई, या हमारी भी जो वृत्ति किसी स्त्री के प्रति जा रहा है, पुरुष के प्रति जा रहा है, तो वास्तव में वह कृष्ण के प्रति ही जाना चाहिए, लेकिन अब वह उसका डायरेक्शन बदल रहा है, दिशा बदल रही है, यह दुर्दशा है। लेकिन जब तक सही डायरेक्शन में वृत्ति नहीं जाएगी, तो 100 जन्म, 100 वर्ष की बात क्या है, 100 जन्म तक, 1000 जन्म तक, करोड़ जन्म तक वो भोगते रहिए, लेकिन तृप्ति नहीं होगी, जो चाह है उसकी पूर्ति नहीं होगी। और कदाचित वह वृत्ति भगवान के तरफ चली गई, तब वहां से हट नहीं सकती, वहां पूर्ण संतोष है। और कल भोगी भोगयो हो, इस शब्द पर श्री वैकुंठा बोल रहे थे, यारे पुरुष के प्रति क्यों आसक्ति होनी चाहिए, वृत्ति मन की वृत्ति तो भगवान के तरफ जाना चाहिए। जैसे गोपियों को गया, गोपियों का वृत्ति गई, गोपियों ने स्पष्ट रूप से कृष्ण से कह रही हैं कि आपके भुजा को देख करके, आपके मुख को देख करके, आपके वक्षस्थल को देख करके हम लोग दासी हो गए। आप कथा जानते हैं, भगवान जब गोपियों का आह्वान किए, गोपियों को बुलाए, तो गोपियां दौड़ करके भगवान के पास गई, और जब वे भगवान के पास गई तो भगवान उनको कहने लगे, कृष्ण कहने लगे कि तुम लोग रात्रि में कैसे यहां आ गए, तुम लोग ब्रज में चले जाओ, स्त्रियों के लिए रात्रि के समय वन में रहना ठीक नहीं है। कृष्ण ऐसे बोल रहे थे कि गोपियों को कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बदताम श्रेष्ठ है, जितने भी बोलने वाले लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। और बाचा पेशे विमोहयन, अपने शब्द का स्ट्रेस ऐसे डाल रहे थे, उसका एक्सेंट उतार चढ़ाव ऐसे डाल रहे थे कि गोपियां मोहित हो रही थी। यह तो एक अलग विषय है कि कृष्ण के वचन क्या अर्थ दे रहा है, इसको तो केवल गोपियां ही समझ रही थी, लेकिन जो यथाश्रुत अर्थ है, ऊपर ऊपर सुनने पर जो अर्थ है, तो उसके अनुसार कृष्ण कहने लगे कि तुम लोग वन को ब्रज को लौट जाओ, यहां रहना ठीक नहीं है। वे उपदेश दिए, कई एक तरह से उपदेश दिए, पति की सेवा करनी चाहिए, घर के जो सदस्य हैं वे चिंता में पड़े होंगे, और रात्रि के समय यहां रुकना ठीक नहीं है। और जहां तक भक्ति की बात है तो श्रवण कीर्तन से भक्ति बढ़ती रहती है, उसकी की भाई चिंता नहीं है। और खूब सुंदर प्रवचन किए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गोपियों की स्थिति देखिए। जब कृष्ण के प्रवचन को सुनी तो सबसे पहले कहती है, कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो। सुखदेव गोस्वामी के दृष्टि में तो सबसे सुंदर भाषण करने वाले, लेकिन गोपियां कहते हैं ना ठीक बोलना नहीं जानते, अले बोलना सीखो। मैवम विभोर हति भगवान गदतुम निशंसन, अरे और बात तो मान लो इतना कठोर तुमको नहीं बोलना चाहिए, यह ठीक नहीं है। और गोपियां तो बहुत दुखी हुई, वो बहुत विकल हो गई। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि इति विप्रिय मा कर्ण्य गोप्य गोविंद भासितम, विषंगड़ा भग्न संकल्प चिंता माप दुरतया। जब कृष्ण गोपियों के नाम को पुकार करके बंसी वादन किए थे, उनको बुलाए थे, तो गोपियां तो दौड़ करके गई, और रास्ते में उनके मन में बहुत प्रकार का संकल्प था, पहले से ही संकल्प था कि कब कृष्ण के नजदीक जाने का अवसर मिलेगा, कब हम कृष्ण के नजदीक बैठेंगे, कब उनके चरणों का स्पर्श करेंगे, कब उनका आलिंगन करेंगे, कब उनका चुंबन करेंगे। कई एक प्रकार की अभिलाषा थी, लेकिन कहने की विषंगड़ा भग्न संकल्प, और भगवान की बात सुनी तो दुखी हो गई, खेत से युक्त हो गई, और भग्न संकल्प उनका सब संकल्प टूट गया, समाप्त हो गया, खंडित हो गया। चिंता माप दुरत गया, और बहुत भारी चिंता में पड़ गई। स्त्रियों का स्वभाव है कि जब ये चिंता में पड़ती हैं तो मुख नीचे कर लेती हैं, अपने नख से पृथ्वी को कुदरने लगती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृत्वा मुखान्यवह, वे मुख नीचा कर दे, और सस्वनेन सुस्य बिंबाधराणी, और शोक के मारे उनके हृदय से इतना गर्म सांस आ रहा था कि उनके मुख झुलस रहे थे, उनके अधर झुलस रहे थे। चरणे न भुवम लिखंत्य, और शोक के स्थिति में अपने पैर के नख से पृथ्वी को कुदरने लगी। अफ्रय रूपा तमस्मी कुचकुंक मानी तस्थ मृजंत उर दुख भरास्म तुष्णी, गोपियों को इतना कष्ट हुआ कृष्ण की बात सुन करके, तो उनके आंख से अश्रु गिरने लगे, और उपात मस भी आंख से अश्रु निकल रहे हैं, तो उस जल में, उस अश्रु में काजल भी धूल करके आ रहे हैं। उपात मस भी, जो जल, जो अश्रु कज्जल को धारण किया है, कज्जल को लिया है, उस अश्रु धारा से मृजंत कुछ कुंकुमानी, जो अपने अस्तन में कुंकुम लगाई है, वे धुलने लगा। बहुत दुखी हुई, और तस्तु मृजंत उर दुख भरास्म तुष्णि, उनको इतना दुख था कि चुपचाप वही खड़ी हो गई। बहुत देर तक कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि प्रेष्ठम प्रियतर मिव प्रतिभासमान, वे विचार करने लगे कि यह तो कृष्ण अपना प्रिय है, आज इसका व्यवहार कैसे बदल गया। देखिए गोपियों के भाव का अनुवाद कर रहे सुखदेव गोस्वामी, गोपियों के मन में कभी यह भाव नहीं आ रहा है कि कृष्ण हमारे अप्रिय हैं, तटस्थ हैं, पृष्ठम। अरे कृष्ण तो हमारा परम प्रिय है और प्रियतरमिव प्रतिभासमानम। आज इसको क्या हो गया कि इतना निष्ठुर वचन बोल रहा है। कृष्णम तदर्थ विनवर्तित सर्वकाम। गोपियों की स्थिति थी कि उसी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सारी कामनाओं को त्याग करके आई हैं, तो उनके मन में विचार आने लगा कि कृष्ण हमारा परिचित है, हमेशा प्रिय का व्यवहार किया है, हम लोगों के पीछे भागता है, पैर पर पड़ता है, कितना अन्याय करता है, आज इसको क्या हो गया। अरे वही कृष्ण है ना, एक बार इससे हम लोग कह करके देखती हैं। नेत्रे विमृत जरुदितो पहते स्म किंचित संरम्भ गदगद गिरो ब्रुवता अनुरक्ता। धैर्य का अवलंबन की, आंख भर गए थे अश्रु से, अपने हाथों से आंख पोछी और संरम्भ गदगद गिरो ब्रुवता अनुरक्ता। उनके मन में थोड़ा सा क्रोध था, किंचित संरम्भ, थोड़ा सा क्रोध था, क्योंकि कृष्ण बहुत कठोर बोले थे। वे आशा लगा करके आई थी और उनको सीधे वापस करने की बात, तो थोड़ा सा क्रोध था, लेकिन वे अनुरक्ता है। देखिए यही शुद्ध प्रेम का पहचान है कि थोड़ा सा विषम स्थिति आने से बदल नहीं जाता। अब इस प्रेम के परिप्रेक्ष्य में मैं जगत के प्रेम का चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं, कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बात समझने के लिए ऐसा देखा जाता है कि एक समय होता है कि चिपके रहते हैं दो जोड़ी, क्या क्या कहते रहते हैं, और थोड़ा सा अंतर पड़ा तो चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। लेकिन गोपियों की स्थिति देखिए कि वे क्रोध से बोल रहे हैं, किंचित संरम भगीरा, उनके वचन में थोड़ा सा क्रोध है लेकिन अनुरक्ता है, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। जैसे पहले वे कृष्ण से अनुरक्त थी वैसे अब भी अनुरक्त है। सुखदेव गोस्वामी उनके स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि क्रोध भरी बात से बोल रही है और लेकिन अनुरक्ता, प्रेम उनका यथावत है, प्रेम में कोई अंतर नहीं हुआ। हम एक संत के मुख से सुने कि गोपियों के मन में विचार आया कि अरे वही कृष्ण है, अपना प्रिय है, अब घर तो नहीं जाएंगे, इसके कहने से भले ही यमुना जी में धस करके मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन जिस घर का त्याग कर दी वहां तो नहीं जाना, लेकिन अपना है एक बार इसे कह करके देखें। तो इधर से उनके आंख से अश्रु बह रहे थे, आंख से में जो काजल है कि पूरा इस हिस्सा दोनों तरफ है वो काला अस्तन तक आ रहा था, काला पट्टी। वे कह रहे थे कि मानो वकील जैसा काला पट्टी बांध करके कहे कि एक बार आर्गुमेंट कर लिया जाए, थोड़ा देखते हैं कि कृष्ण के वचन में कितना दम है। और तुरंत कहना प्रारंभ कि कृष्ण तुमको ऐसा कठोर नहीं बोलना चाहिए, बहुत बातें बोली हैं, अब हमको उतना समय नहीं है कि सब बात को कह पाए, लेकिन वे कह रही हैं कि देखो बहुत धर्म का उपदेश आप कर रहे हो, लेकिन धर्म के दृष्टि से भी देखा जाए तो हम लोगों का तुम्हारे पास रहना ही कर्तव्य है, यही धर्म है, अरे और कुछ नहीं। तो धर्म का कोई उपदेश दे रहा है, कोई गुरु बना है, तो कुछ गुरु की सेवा करेंगे तभी तो धर्म फलित होगा। ऐसा स्थापित बात है कि जब तक गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो उपदेश फलित नहीं होता है। ठीक है तुम कह रहे हो पति की सेवा करने की बात, हम लोग धर्म की बात मान लेंगे, लेकिन पहले उस उपदेश में दृढ़ता आवे, फलित होवे, तो पहले तो कुछ सेवा का अवसर दो। धर्म के सिद्धांत पर चल रहे हो तो फिर भी सेवा के अवसर दो, और तुम यदि फिलॉसफी की बात कर रहे हो तो तुम फिलॉसफिकल दृष्टि से विचार करो तो जितने भी पति हैं वास्तव में तुम ही उस पति के रूप में हो, तो मूल तो तुम हो, तो सेवा का अवसर दो। इसके साथ ही गोपियां कहने लगे कि हमारी मजबूरी है, यदि हम जाना भी चाहें तो हम जा नहीं सकते हैं, पादव पदम न चलतस, हमारा पैर चलेगा ही नहीं, अब वन में आ गई तो ब्रज के तरफ बढ़ेगा ही नहीं, कैसे जाएंगे। हम लोग गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण कह सकते हैं, अरे उसकी समस्या नहीं है, बहुत बुगी है, बुगी समझते हैं ना, भैंसा गाड़ी, वो मंगा देता हूं, बैठा देता हूं, चले जाओ। तो कहते हैं कि जा, चले भी जाए तो करवाम की, हम लोग करेंगे क्या, हाथ हमारा कोई काम में नहीं लगेगा, हाथ जब काम ही नहीं करेगा तो कैसे किसी की सेवा करेंगे। और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो, और सिंचांग नष्ट तदधरामृत पूर केण हाषा व लोक कल गीतज हृदयाग्नि। और वे कृष्ण पर जिम्मेवारी डाल रही हैं, देखो तुम इसके लिए, हमारी जो स्थिति है उसके लिए तुम उत्तरदायी हो, तुम्हारे मुस्कान को देख करके, तुम्हारे हंसी को देख करके हम लोगों के हृदय में बहुत कामना जग गई है, तो तुम इसको शांत करो, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम लोग विरह अग्नि में जल जाएंगे, तुम्हारा ध्यान करते हुए प्रत्यक्ष यदि तुम सेवा का अवसर नहीं दे रहे हो तो हम लोग समाधि में तुम्हारे पास आ जाएंगे। कृष्ण कह सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में काम का वेग है तो तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए, पति शांत कर देंगे तुम्हारे कामना को। गोपियां कह रही हैं कि ना, यह नहीं हो सकता, यर्यम बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचित रण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वया विरमिता बत पारयाम। गोपियां कहने लगे कि कृष्ण हमारी यह स्थिति है कि जब से तुम्हारा स्पर्श की है, तुम्हारे चरणों का स्पर्श की है और तुम्हारे सान्निध्य में जो सुख मिला है, तो अब हमारी यह स्थिति हो गई है कि हम अपने पति के समक्ष खड़ी भी नहीं हो सकते, उनसे रमण करने की बात तो दूर है, उनके समक्ष खड़ी नहीं हो सकती। और इसमें कोई दोष बुद्धि मत करना, ये केवल हम लोगों की स्थिति नहीं है, अरे नारी जाति में सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी जी हैं, लेकिन लक्ष्मी की स्थिति पर विचार करो कि श्रीरियत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टा। लक्ष्मी जी की यह स्थिति है कि उनको आप छाती पर स्थान दिए, कोई वहां दूसरी स्त्री नहीं है, अकेले वे छाती पर हैं, लेकिन उस लक्ष्मी जी की स्थिति है श्रीरियत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या, लक्ष्मी जी आपके चरण की सेवा चाहते हैं, जबकि वहां एक स्त्री पहले से सेवा के लिए है तुलसी जी, और भी बहुत सारे भक्त हैं। तो पुरुषों के बीच में, भक्तों के बीच में लज्जा का त्याग करके लक्ष्मी जी चरणों का सेवा करना चाहती हैं। उस लक्ष्मी जी की क्या स्थिति है कि जस्या सुवीक्षण कृतेन्य सुरभ प्रयास, अरे उस लक्ष्मी जी के सारे देवता लोग प्रयास करते हैं कि उस लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष मिल जाए, उनके प्रसाद मिलने से, उनके अनुकूल दृष्टि मिलने से अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा पद अचल हो जाएगा, तो अपने पद के अस्थायित्व के लिए, धन की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े लोकपाल लोग उस लक्ष्मी जी के कृपा चाहते हैं, कृपा कटाक्ष चाहते हैं कि वे अनुकूल दृष्टि से हमारे तरफ देख लें। और उस लक्ष्मी जी की स्थिति है कि अपने सौत के साथ रह करके भी चरणों की सेवा करनी चाहते हैं, इसलिए आपसे कृष्ण यही प्रार्थना है कि तन्नह प्रसिद्ध ब्रजनार्दन तेंघ्रि मूलम प्राप्ता विसृज्य वसतिस तदुपासना सह। हम तो आपके नजदीक बैठने की, आपकी सेवा की आशा लेकर के अपने गांव को नगर को कामना को छोड़ करके आई हैं तो हम पर कृपा कीजिए, अपने चरणों का दासी बना लीजिए, अपने चरण का दास्य दीजिए, सेवा करने का अवसर दीजिए। कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि ये कैसे विचार आ रहा है तुम्हारे मन में, पति के घर में जाओगी स्वामिनी रहोगी तो ये स्वामिनी का पद त्याग करके ये दासी का पद क्यों स्वीकार कर रही है। गोपियां कह रही विक्षा लकावृत मुखम तव कुंडल श्री कृष्ण, इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि हम लोग तुम्हारे मुख का दर्शन कर लिए, जो घुंघराले बालों से ढका हुआ मुख है और जिस मुख में मुस्कान है, जिस मुख पर के कपोल पर कुंडल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, शोभित हो रहा है, उस मुख का दर्शन कर लिए और तुम्हारे वक्षस्थल का दर्शन कर लिए और दत्ता भयम भुजदंड जुगम विलोक्य, और जो अभय प्रदान करने वाले दो भुजा हैं इसका दर्शन कर लिए। तुम्हारे भुजाओं का दर्शन करके हम लोग दासी हो गए, दास की अभिलाषा करती, तो केवल कृष्ण के दर्शन से, भुजाओं का दर्शन करने से अभिलाषा जग गई कि इन भुजाओं का आश्रय चाहिए। और कृष्ण के भुजाओं के विषय में कह रहे दत्ता भयम, वो अभय प्रदान करने वाला है। कृष्ण के भुजा के विषय में यह प्रसिद्ध बात है, श्रीमद् भागवतम में हम अक्रूर जी के मनोभाव का अध्ययन करते हैं, उसको सुनते हैं। अक्रूर जी जब मथुरा से ब्रज में आ रहे हैं, नंदगांव आ रहे हैं, तो भगवान के विषय में कई एक बात सोच रहे हैं, उसमें एक बात कह रहे हैं कि अप्यंग्र मूले पततस्य मे विभो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकजम। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जब जाकर के कृष्ण के चरणों में मैं नमस्कार करूंगा, उनके चरणों में गिर जाऊंगा, तो अपने हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। अप्यंग्र मूले पततस्य मे विभो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकजम, वे अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखेंगे। और उस हस्त कमल के विषय में कह रहे हैं कि दत्ता भयम, जो अभय प्रदान करने वाला, काल भुजंग रंग सा प्रोद्वेजिता नाम शरणई श्रीणाम निर्णाम, जो काल रूप सर्प से भयभीत हैं और शरण की खोज कर रहे हैं, कोई आश्रय चाह रहे हैं, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, लेकिन उस महान भय से अभय प्रदान करने वाला वह हस्त कमल है दत्ता भयम। तो भगवान का जो बाह है, जो उनका हाथ है, अभय प्रदान करने वाला है, और केवल अभय ही प्रदान नहीं करता, वह परम सुखद है, परम उदार है। उसी हाथ के विषय में अक्रूर जी भावना कर रहे हैं कि समरहणम यत्र निधाय कौशिक बलिश तथा चाप जगत तेन्द्रता, अरे जिस हाथ में थोड़ा सा जल दान करने से बलि महाराज तीनों लोक के ऐश्वर्य को प्राप्त किए, समरहणम यत्र निधाय कौशिक बलिश तथा चाप जगत तेन्द्रता, यदवा विहारे ब्रजजोषिताम श्रमम स्पर्शे न सौगंधिक गंध उपानुदत, और वही हस्त कमल है गोपियों को स्पर्श दिया। गोपियां जब रासलीला में नृत्य में थक गए, उनके कपोल पर पसीना आ गया, तो उसी हाथ से भगवान उनके गोपियों के कपोल के पसीनों का मार्जन किया, उसको पोंछे, वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे। तो भगवान के हाथ के विषय में दत्ता भयम, यह सब प्रकार से अभय प्रदान करने वाला है, सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाला है। तो गोपियां कह रही हैं कि उसी हाथ को देख करके हम आपकी दासी हो गए। तो कल श्री वैकुंठा प्रभु बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि एक स्वाभाविक आश्रय है, वह आश्रय प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, सुखी हो जाए, सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब तक वह आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, तो कितना हो सुंदर हाथ का आश्रय प्राप्त कीजिए, एक जन्म, सौ वर्ष या सौ जन्म, हजार वर्ष, करोड़ जन्म तक आश्रय लेते रहिए, संतुष्टि नहीं होगी, जलन बना का बना रहेगा। यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वाभाविक वृत्ति को भगवान के तरफ डाइवर्ट मोड़े, उधर ले जाएं। इसी में जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण।